एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जो वाकई बहुत बड़े सवाल उठाती है।
हाँ बिल्कुल, हमारे अस्तित्व के बारे में, ये ब्रह्मांड कैसे बना और इन सब के पीछे क्या कोई नियम है।
सही, हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड मोडिनो की किताब द ग्रैंड डिजाइन की।
और देखिए, ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं, शायद पहले से भी ज्यादा, है ना?
बिल्कुल, हम सब सोचते हैं कभी ना कभी कि ये सब शुरू कैसे हुआ।
हाँ, और क्या कोई बड़ा प्लान है इसके पीछे, कोई मकसद?
और सबसे बढ़कर क्या विज्ञान, क्या साइंस इन सवालों के जवाब दे सकता है?
यही आजकल जहाँ इतनी जानकारी है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, वहीं ये बुनियादी सवाल हमें, मतलब अपनी जड़ों से जोड़ते हैं।
और ये किताब ये दावा करती है कि हाँ, मॉडर्न फिजिक्स के पास इनके जवाब हैं।
और शायद ऐसे जवाब जो हमें चौंका दें।
बिल्कुल, तो चलिए इन जवाबों में गोता लगाने से पहले उन लोगों के बारे में जान लें जिन्होंने ये विचार दुनिया के सामने रखे।
हाँ, स्टीफन हॉकिंग, ये नाम सुनते ही एक असाधारण प्रतिभा की छवि मन में आती है।
सही कहा, आइंस्टीन के बाद शायद सबसे प्रसिद्ध, सबसे जाने माने सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी।
कैम्ब्रिज में ल्यूकेशियन प्रोफेसर, मतलब वो कुर्सी जो कभी न्यूटन के पास थी।
हाँ, और सोचिए उनका काम ब्लैक होल्स पर, ब्रह्मांड की शुरुआत पर कितना क्रांतिकारी था।
और वो भी तब जब उनका शरीर एक गंभीर बीमारी ALS से जूझ रहा था।
बिल्कुल, हॉकिंग रेडिएशन की खोज, उसने तो ब्लैक होल की हमारी पूरी समझ ही बदल दी।
उनकी पहली किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो तो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी।
हाँ, उन्होंने मुश्किल विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया।
और द ग्रैंड डिजाइन, ये किताब एक तरह से उनके जीवन भर के काम का सार है, कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी, इन दोनों को जोड़कर उन अंतिम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश।
और उनके साथ है लियोनार्ड मोडिनो।
हाँ, वो खुद भी एक भौतिक विज्ञानी हैं और विज्ञान को दिलचस्प तरीके से लिखने के लिए जाने जाते हैं।
तो इस किताब में हॉकिंग का गहरा ज्ञान है और मोडिनो की लिखने की कला।
सही, ये जोड़ी मुश्किल विचारों को भी समझने लायक बना देती है।
अच्छा, तो इस किताब का मूल तर्क क्या है, मतलब संक्षेप में ये कहना क्या चाहती है?
देखिए, इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल दावा यह है कि ब्रह्मांड को बनाने के लिए किसी दिव्य शक्ति या यू नो किसी प्रथम कारण की जरूरत नहीं थी।
ओह, ये तो बहुत बड़ा दावा है, सुनने में ही थोड़ा अटपटा लगता है ना?
बिल्कुल,
क्योंकि अगर कोई बनाने वाला नहीं तो फिर ये सब आया कहाँ से? सदियों से तो हम यही सुनते आए हैं।
हाँ,
कि इतनी बड़ी, इतनी जटिल रचना के पीछे कोई ना कोई डिजाइनर तो होगा ही।
सही बात है, लेकिन यही पे ये किताब भौतिकी के नियमों को सामने लाती है।
अच्छा,
हॉकिंग और मोडिनो कहते हैं कि जो फंडामेंटल लॉज हैं फिजिक्स के, जैसे गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम मैकेनिक्स,
हाँ,
बस वही काफी थे ब्रह्मांड को शून्य से पैदा करने के लिए।
शून्य से, मतलब कुछ नहीं से।
हाँ, उनका तर्क है कि ब्रह्मांड अपने आप स्वतः स्फूर्त तरीके से, स्पॉन्टेनियसली अस्तित्व में आ सकता था और आया।
अच्छा, तो ये उस गहरे सवाल का जवाब देने की कोशिश है कि कुछ नहीं के बजाय कुछ क्यों है।
एग्जैक्टली, ये उसका एक वैज्ञानिक जवाब देने की कोशिश है।
लेकिन किताब का नाम द ग्रैंड डिजाइन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगता? अगर डिजाइनर नहीं तो फिर डिजाइन कैसा?
हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ डिजाइन का मतलब किसी के बनाए हुए ब्लूप्रिंट से नहीं है,
तो फिर?
बल्कि उन अद्भुत और शक्तिशाली भौतिक नियमों से हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। वो नियम ही अपने आप में इतने सक्षम हैं, इतने सुरुचिपूर्ण हैं कि वो एक जटिल ब्रह्मांड बना सकें। वही ग्रैंड डिजाइन है।
अच्छा, मतलब नियम ही डिजाइन है?
हाँ, और किताब में एम थ्योरी का जिक्र आता है, एम सिद्धांत।
हाँ, सुना है इसके बारे में, इसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का उम्मीदवार मानते हैं।
बिल्कुल, सबसे मजबूत दावेदार। और ये थ्योरी एक ऐसा फ्रेमवर्क देती है जिसमें किसी क्रिएटर की जरूरत ही नहीं रह जाती।
और हमारा ब्रह्मांड?
वो कई सारे संभावित ब्रह्मांडों में से बस एक बन जाता है जो क्वांटम वैक्यूम से स्वाभाविक रूप से उभरा। तो ये किताब असल में उन आम लोगों के लिए है जो सोचते हैं।
हाँ, जो जिज्ञासु है,
जो ब्रह्मांड और अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं
और शायद पारंपरिक जवाबों से संतुष्ट नहीं है, विज्ञान की नजर से देखना चाहते हैं।
बिल्कुल, ये एक तरह से विज्ञान को दर्शन और धर्म के इलाके में ले जाती है।
चलिए, तो अब किताब के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये तर्क कैसे सामने आता है। पहला अध्याय है अस्तित्व का रहस्य।
हाँ, यहीं से वो बड़े सवाल शुरू होते हैं, हम क्यों हैं, ये नियम ऐसे ही क्यों हैं, और यहीं पर लेखक एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं।
क्या?
वो कहते हैं कि दर्शन यानी फिलॉसफी अब मृत हो चुका है।
ओ मृत, ये तो काफी तीखी बात कह दी। उनका मतलब क्या है इससे?
उनका तर्क ये है कि फिलॉसफी जो है वो विज्ञान की नई खोजों के साथ, खासकर भौतिकी की,
हाँ,
उनके साथ कदम से कलम मिलाकर नहीं चल पाई है, पिछड़ गई है।
अच्छा,
इसलिए अब ज्ञान की जो मशाल है डिस्कवरी की, वो वैज्ञानिकों के हाथ में है, वही इन बड़े सवालों के भरोसेमंद जवाब दे सकते हैं।
दिलचस्प नजरिया है। अच्छा, इसके बाद अध्याय दो, कानून का शासन, ये हमें इतिहास में ले जाता है।
हाँ बिल्कुल। कैसे इंसान पहले सोचता था कि दुनिया देवी देवताओं की मर्जी से चलती है, सब कुछ मनमाना है।
फिर यूनानी आए जिन्होंने सोचा कि नहीं, इसमें कोई व्यवस्था है, कोई ऑर्डर है।
और फिर आई न्यूटन, उन्होंने दिखाया कि ब्रह्मांड कुछ पक्के, अटल, सार्वभौमिक नियमों से चलता है,
यूनिवर्सल लॉज।
हाँ, और ये नियम किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था।
मतलब फोकस ईश्वर की मर्जी से हटकर भौतिक नियमों की कंसिस्टेंसी पर आ गया।
एग्जैक्टली।
ठीक है, फिर आता है अध्याय तीन, वास्तविकता क्या है। यहाँ पर आपने कहा था कि एक थोड़ी अजीब सी अवधारणा आती है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा समझने वाला है। इसे कहते हैं मॉडल आश्रित यथार्थवाद, मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म।
मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म मतलब क्या हुआ इसका?
इसका मूल विचार ये है कि हम कभी भी असली या परम यथार्थ को सीधे तौर पर नहीं जान सकते, कभी नहीं।
हम नहीं जान सकते?
नहीं, हम बस मॉडल बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, अवधारणाएं बनाते हैं।
अच्छा।
जो हमारे अवलोकनों से, हमारे एक्सपेरिमेंट से मेल खाते हों और जिनसे हम भविष्यवाणियां कर सकें।
तो ये पूछना ही बेकार है कि कोई मॉडल सच है या नहीं।
हाँ, ये सवाल ही गलत है। बस ये पूछना चाहिए कि क्या वो मॉडल काम करता है, क्या वो हमारे मुशाहदात को समझाता है, क्या वो प्रिडिक्टिव है।
इसे समझाने के लिए वो सुनहरी मछली वाला उदाहरण देते हैं शायद।
हाँ बिल्कुल। एक मछली जो एक टेढ़े कर्व्ड फिश बॉल में रहती है,
हाँ,
उसके लिए तो बाहर की दुनिया विकृत होगी, सीधी रेखाएं भी टेढ़ी दिखेंगी। लेकिन अगर वो मछली अपनी उस विकृत दुनिया के लिए नियम बना ले और वो नियम काम करते हों, प्रिडिक्ट कर पाते हों, तो उसके लिए वही वास्तविकता है।
अच्छा, तो हमारी अपनी वास्तविकता भी एक मॉडल ही है?
बिल्कुल, जिसे हमारा दिमाग, हमारी इंद्रियां बनाती हैं। जैसे एक शहर का नक्शा होता है,
हाँ,
सड़कों का नक्शा अलग, मौसम का अलग, पानी की लाइनों का अलग, कोई भी एक नक्शा असली शहर नहीं है, पर सब अपने अपने काम के लिए सही हैं।
बात समझ में आई, और ये नजरिया हमें क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब बातों को स्वीकार करने में मदद करता है।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड तो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे हैं।
और उसी क्वांटम दुनिया में हम अध्याय चार, वैकल्पिक इतिहास में जाते हैं। यहाँ रिचर्ड फाइनमैन का जिक्र आता है।
हाँ, रिचर्ड फाइनमैन और उनका इतिहासों का योग, सम ओवर हिस्ट्रीज वाला आइडिया।
ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है, इतिहासों का योग।
हाँ, ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। फेनमैन ने कहा कि जब कोई कण, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन,
ठीक है,
एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बिंदु ए से बिंदु बी तक,
हाँ,
तो वो सिर्फ एक सीधे रास्ते से नहीं जाता,
तो
वो एक ही समय में हर संभव रास्ते से जाता है, जितने भी रास्ते हो सकते हैं, सीधा, टेढ़ा, घूमकर, कहीं और से होकर, सब एक साथ।
एक साथ? ये कैसे मुमकिन है?
यही तो क्वांटम की माया है। और जो रास्ता हम असल में देखते हैं या मापते हैं, वो इन सभी संभावित इतिहासों का एक तरह का भारित औसत होता है।
इसका सबसे मशहूर उदाहरण वो डबल स्लिट प्रयोग है ना?
हाँ, क्लासिक। एक अकेला कण भी जब दो स्लिट्स की तरफ जाता है,
हाँ,
तो वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो दोनों स्लिट से एक साथ गुजरा हो, तभी वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है।
ये तो हमारी कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ है। और लेखक कहते हैं कि ये सिर्फ कणों पर नहीं,
नहीं, वो कहते हैं ये सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड पर भी लागू होता है।
पूरे ब्रह्मांड पर? मतलब ब्रह्मांड का भी कोई एक निश्चित इतिहास नहीं है?
क्वांटम स्तर पर तो यही लगता है, कम से कम ये मॉडल यही कहता है।
वाह, तो ये मॉडल आश्रित यथार्थवाद और क्वांटम की अजीब दुनिया, ये हमें अगले कदम की तरफ ले जाते हैं।
हाँ, यानी सब कुछ के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश की ओर। अध्याय पांच इसी पर है।
हाँ, 20वीं सदी की फिजिक्स के दो बड़े स्तंभ, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी,
जो ग्रेविटी और बड़े स्केल, तारे, ग्रह, गैलेक्सी को समझाती है,
और दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स,
जो बहुत छोटे स्केल, परमाणु, कण और बाकी तीन बलों को समझाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
और दिक्कत ये थी कि ये दोनों सिद्धांत आपस में
मतलब मेल नहीं खाते थे, काम नहीं करते थे एक साथ।
खासकर एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे ब्लैक होल के अंदर या बिग बैंग के समय, वहां दोनों की जरूरत पड़ती थी, पर वो साथ में गड़बड़ करते थे।
तो उन्हें जोड़ने की जरूरत थी, एक यूनिफाइड थ्योरी।
यहीं पर स्ट्रिंग थ्योरी आई। ये कहती है कि फंडामेंटल पार्टिकल बिंदु जैसे नहीं,
बल्कि
छोटे वाइब्रेट करते हुए धागे हैं, स्ट्रिंग्स।
अच्छा, और अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग कण बनते हैं।
बिल्कुल, जैसे गिटार के तार के अलग अलग कंपन से अलग अलग सुर निकलते हैं।
और फिर एम थ्योरी,
वो इसका अगला कदम है।
हाँ, वो स्ट्रिंग थ्योरी का और ज्यादा विकसित और ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूप है।
और यहीं पर एक और चौंकाने वाली बात आती है।
क्या?
कि एम थ्योरी को काम करने के लिए 11 आयामों की जरूरत पड़ती है। 11 आयाम, 10 स्पेस के और एक टाइम का।
हाँ, इसे विजुलाइज करना भी हमारे लिए नामुमकिन है। हम तो बस 3 स्पेस और 1 टाइम आयाम ही अनुभव करते हैं।
सही कहा। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी बात अध्याय 6 हमारे ब्रह्मांड का चयन में है, है ना?
बिल्कुल।
एम थ्योरी की सबसे बड़ी या कहें सबसे अजीब भविष्यवाणी शायद यही है
कि ये किसी एक अनोखे ब्रह्मांड की बात नहीं करती।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि ये कहती है कि लगभग 10^500,
यानी 100 के बाद 500 शून्य। पाप रे।
हाँ, इतने अलग अलग तरह के ब्रह्मांड संभव हैं, जिनके अपने अपने भौतिक नियम हो सकते हैं।
इसे ही मल्टीवर्स कहते हैं, बहु ब्रह्मांड।
सही, मल्टीवर्स। तो हमारा ब्रह्मांड कोई अकेला या खास नहीं है, ये बस उस विशाल कॉस्मिक लैंडस्केप का एक छोटा सा कोना है।
लेकिन अगर इतने सारे ब्रह्मांड हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि हमारा वाला इतना सही क्यों है।
सही मतलब?
मतलब जीवन के लिए जो भौतिक स्थिरांक है, फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स, जैसे गुरुत्वाकर्षण की ताकत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ताकत, वो जीवन पनपने के लिए बिल्कुल सटीक लगते हैं। जरा सा भी ऊपर नीचे होते तो शायद हम होते ही नहीं। इसे फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम कहते हैं।
सही, और कई लोग इसे डिजाइनर का सबूत मानते हैं कि देखो, किसी ने इसे हमारे लिए फाइन ट्यून किया है।
हाँ, तो किताब इसका क्या जवाब देती है?
अध्याय 7, स्पष्ट चमत्कार, इसी सवाल का जवाब देता है। एम थ्योरी और मल्टीवर्स के आइडिया को एंथ्रोपिक सिद्धांत, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल के साथ मिलाकर।
एंथ्रोपिक सिद्धांत, ये क्या है?
इसका मूल विचार ये है कि हम ब्रह्मांड को जैसा देखते हैं वैसा इसीलिए देखते हैं क्योंकि अगर वो वैसा ना होता तो हम यहाँ उसे देखने के लिए मौजूद ही ना होते।
थोड़ा और समझाएंगे।
देखिए, अगर 10,500 ब्रह्मांड हैं और सबके नियम थोड़े बहुत अलग हैं,
हाँ,
तो क्या ये ताज्जुब की बात है कि उनमें से कुछ, चाहे कितने भी कम हों, ऐसे होंगे जहाँ जीवन पनपने लायक स्थितियाँ हों?
नहीं, स्टैटिस्टिकली तो शायद नहीं।
बस, तो ये फाइन ट्यूनिंग कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक तरह का सिलेक्शन इफेक्ट है।
जैसे लॉटरी का टिकट, करोड़ों टिकट बिके तो किसी ना किसी का तो निकलना ही है।
बिल्कुल, जीतने वाला भले सोचे मैं ही क्यों, पर जवाब है कि अगर कोई न जीतता तो सवाल ही कौन पूछता।
सही बात है।
हम इस ब्रह्मांड में इसीलिए मौजूद हैं और सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ये उन कुछ ब्रह्मांडों में से है जहाँ ऐसा करना संभव है, जहाँ जीवन संभव है।
वाह, तो ये डिजाइन नहीं बल्कि संभावना और ऑब्जर्वर सिलेक्शन का खेल है।
हाँ, उनका तर्क यही है।
ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, और फिर आता है आखिरी अध्याय, द ग्रैंड डिजाइन, जहाँ सब कुछ जुड़ जाता है।
हाँ, ये पूरी किताब का क्लाइमैक्स है जहाँ वो अपने मुख्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, स्वतः स्फूर्त रचना, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन।
स्पॉन्टेनियस क्रिएशन,
सवाल वही पुराना, अगर ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो उसे किसने बनाया, किसने शुरू किया?
हाँ,
जवाब, किसी ने नहीं बल्कि भौतिकी के नियमों ने।
नियमों ने
कैसे? क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि शून्य यानी खाली स्पेस भी असल में खाली नहीं होता, उसमें ऊर्जा और कण लगातार क्षण भर के लिए पैदा और नष्ट होते रहते हैं।
हाँ, क्वांटम फ्लक्चुएशंस।
बिल्कुल, तो कण और ऊर्जा शून्य से आ सकते हैं, लेकिन सवाल है कि पूरे ब्रह्मांड जितनी ऊर्जा कहाँ से आई? ये तो ऊर्जा संरक्षण नियम के खिलाफ लगता है।
हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
यहीं पे गुरुत्वाकर्षण काम आता है। किताब तर्क देती है कि गुरुत्वाकर्षण की जो ऊर्जा होती है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव।
नेगेटिव एनर्जी।
हाँ, इसे ऐसे सोचिए कि अगर आप जमीन में गड्ढा खोदते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी जैसा है, तो उससे निकली मिट्टी का ढेर बनता है, ये पॉजिटिव एनर्जी, मैटर जैसा है।
अच्छा,
कुल मिलाकर जमीन अब भी समतल है, मतलब कुल ऊर्जा शून्य ही रही।
तो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में जितना पदार्थ और पॉजिटिव एनर्जी है,
हाँ,
उतनी ही नेगेटिव एनर्जी गुरुत्वाकर्षण के रूप में है।
हाँ,
और कुल ऊर्जा शून्य है।
एग्जैक्टली, ये संभव है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा शून्य हो, और अगर कुल ऊर्जा शून्य है
तो
ब्रह्मांड शून्य ऊर्जा की स्थिति से ऊर्जा संरक्षण का नियम तोड़े बिना पैदा हो सकता था, एम थियरी इस पूरी प्रक्रिया का गणितीय ढांचा देती है।
वाह, तो निष्कर्ष ये कि ब्रह्मांड शून्य से खुद को बना सकता है और बनाएगा, किसी बाहरी स्पार्क या निर्माता की जरूरत ही नहीं थी।
हाँ, ये सच में बहुत बड़ा, बहुत रेडिकल दावा है।
बिल्कुल है। तो अगर हम इस किताब के मुख्य संदेशों को देखें, की टेकअवेज।
हाँ, तो पहला है विज्ञान की सर्वोच्चता, कि विज्ञान अब उन सवालों के जवाब दे रहा है जो कभी फिलॉसफी और धर्म के पास थे। दूसरा, मॉडल आश्रित यथार्थवाद, कि हमारी सच्चाई हमेशा एक मॉडल पर निर्भर करती है। ये हमें विनम्र बनाता है, हाँ, याद दिलाता है कि हमारी समझ कभी पूरी नहीं होती। हम भारत में भी देखते हैं कैसे एक ही घटना पर लोगों के कितने अलग अलग नजरिए, कितने अलग मॉडल होते हैं,
और हर कोई अपने मॉडल को ही असली मानता है।
बिल्कुल।
तीसरा, अस्तित्व की क्वांटम प्रकृति, कि फंडामेंटल लेवल पर दुनिया बहुत अजीब है, हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग।
चौथा, एम थ्योरी और मल्टीवर्स, हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है और फाइन ट्यूनिंग शायद सिर्फ एक संयोग है।
और पांचवां, सबसे जबरदस्त, शून्य से स्वतः स्फूर्त रचना, ब्रह्मांड को किसी निर्माता की जरूरत नहीं थी। ये विचार तो विज्ञान बनाम आस्था की बहस में एक नया मोड़ लाता है।
किताब में कुछ पंक्तियां वाकई बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे वो कहना कि क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम है, ब्रह्मांड शून्य से स्वयं को बना सकता है और बनाएगा।
हाँ, ये तो उनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ही है।
और वो दावा कि दर्शन मर चुका है, वैज्ञानिकों ने ज्ञान की हमारी खोज में खोज की मशाल उठाई है, कितना आत्मविश्वास है इसमें, हाँ? ये विज्ञान की ताकत दिखाता है, हालांकि फिलोसोफर्स शायद इससे सहमत न हो।
बिल्कुल नहीं होंगे। फिर वो मॉडल वाली बात, वास्तविकता की कोई चित्र या सिद्धांत स्वतंत्र अवधारणा नहीं है, हम मॉडल आश्रित यथार्थवाद नामक दृष्टिकोण अपनाएंगे।
हाँ, ये हमें अपनी सोच की सीमाओं के बारे में बताता है
और मल्टीवर्स के बारे में, कि ये कोई फैंटेसी नहीं, बल्कि यदि एम सिद्धांत सही है तो मल्टीवर्स कोई विकल्प नहीं बल्कि भौतिकी के नियमों का परिणाम है।
मतलब ये हमारे बेस्ट साइंस का नतीजा है। ये सारे विचार हमारी सोच को हिला देते हैं ना?
बिल्कुल। पर सवाल ये है कि इन बड़े ब्रह्मांडीय विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है?
हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पर,
बौद्धिक और प्रैक्टिकल दोनों लेवल पर। पहला तो, ये अस्तित्व को देखने का एक नया नजरिया देता है। अगर कोई पारंपरिक धार्मिक जवाबों से संतुष्ट नहीं है तो ये एक शक्तिशाली वैज्ञानिक विकल्प देता है, और ये बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। अगर हमारी सच्चाई सिर्फ एक मॉडल है तो शायद हमें दूसरों के नजरिए के प्रति ज्यादा खुला होना चाहिए।
हाँ, और अपने विचारों पर कम अड़ना चाहिए शायद।
बिल्कुल। साथ ही ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। विज्ञान कैसे काम करता है, सबूतों पर आधारित थ्योरी कैसे बनते हैं, ये समझना हमें किसी भी जानकारी को बेहतर तरीके से परखने में मदद करता है।
सही कहा, फेक न्यूज के जमाने में ये बहुत जरूरी है।
और ये जीवन के उद्देश्य और अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
मतलब,
अगर ब्रह्मांड हमारे लिए नहीं बनाया गया तो क्या जीवन का कोई अर्थ नहीं? या फिर इसका मतलब ये है कि अर्थ कहीं बाहर से नहीं आता,
बल्कि हमें खुद बनाना पड़ता है?
हाँ, अपने रिश्तों से, अपने काम से, ज्ञान से, कला से।
ये भी एक शक्तिशाली विचार है।
और अंत में ये अज्ञात के प्रति सम्मान पैदा करता है। विज्ञान जितना जानता है उससे कहीं ज्यादा वो है जो वो नहीं जानता।
सही, ये किताब हमें उस विशाल अज्ञात की झलक दिखाती है और हमेशा सीखते रहने, सवाल पूछते रहने के लिए प्रेरित करती है।
आपके लिए इस किताब का सबसे चौंकाने वाला पहलू क्या था?
मेरे लिए तो यही स्पॉन्टेनियस क्रिएशन वाला आइडिया, स्वतः स्फूर्त रचना। ये सोचना कि भौतिकी के नियम अपने आप में इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि एक पूरा ब्रह्मांड बना दे बिना किसी भारी मदद के, ये पारंपरिक सोच को बिल्कुल पलट देता है।
और मुझे मॉडल आश्रित यथार्थवाद ने बहुत प्रभावित किया। ये सिर्फ फिजिक्स का सिद्धांत नहीं, ये जीवन को देखने का एक तरीका है।
कैसे?
ये याद दिलाता है कि हम सब अपनी अपनी वास्तविकता के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, और शायद दूसरों के चश्मे को समझना भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, वो दर्शन मर चुका है वाला बयान वाकई बहुत बोल्ड।
तो कुल मिलाकर द ग्रैंड डिजाइन ये दिखाती है कि विज्ञान अब सिर्फ कैसे का नहीं बल्कि क्यों का जवाब देने की भी हिम्मत कर रहा है।
हाँ, ये ब्रह्मांड को एक स्थिर अकेली जगह की तरह नहीं
बल्कि एक डायनामिक क्वांटम संभावनाओं से भरी जगह के रूप में देखती है, जहां कई इतिहास और कई ब्रह्मांड होना नॉर्मल है।
और ये सुझाव देती है कि हमारा अस्तित्व शायद किसी दिव्य योजना का नतीजा नहीं
बल्कि प्रकृति के मूलभूत नियमों का एक स्वाभाविक परिणाम है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर ब्रह्मांड ऐसे ही नियमों से चल रहा है और हमारी समझ भी हमेशा एक मॉडल ही रहेगी, तो क्या हम कभी परम सत्य जान पाएंगे, या ज्ञान की ये यात्रा हमेशा चलती ही रहेगी, नए मॉडलों के साथ, नई खोजों के साथ?
शायद यही यात्रा ही मंजिल है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए प्रस्तुत है एकत्र फाउंडेशन द्वारा।